और कैनेडा पोस्ट और बहुत सारे जो ऑफिसेस थे आज क्लोज थे, हमारा नहीं था हम खुले हैं जी, ठीक है जी। और जनाब रेजिडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको जो जो ये जो सर्विसेज थी, जैसे कि इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में उन्होंने पूछा, तो उनको बताया जाता है कि जी इमरजेंसी सर्विसेज 311 जो हैं वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है, वो चलती रहेंगी वैसे ही। लेकिन जनाब बियर स्टोर, LCBO, वाइन रैक स्टोर्स, ये सारे क्लोज थे, लाइब्रेरीज क्लोज थी, लेकिन सिनेप्लेक्स मूवी थिएटर्स जो थे वो खुले हुए थे और अपने रेगुलर आवर्स पे काम कर रहे हैं, हैं जी। ते उन्होंने कहा चलो एक तरफ असी LCBO शी बंद कीता है, लेकिन मूवी असी तुसी जाके देख सकते हो, है जी। तो एक मजा बंद है, एक मजा जो है खुला हुआ है। एनवायरमेंट कैनेडा जो है जी, उसने आज कहा है कि आज फॉग ज्यादातर रहेगी। वैसे तो उन्होंने कहा था शाम को जरा ये फॉग चली जाएगी, लेकिन फिर भी जो ड्राइविंग होगी हैजर्डस होगी। तो ज्यादातर ये जो इलाके जिसके अंदर एडवाइजरी इन्होंने इशू की थी, वो ट्रोनो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, हैमिल्टन, बर्लिंगटन, ओकविल, वॉन, रिचमंड हिल, मार्कम, नायग्रा फॉल, सेंट कैथरीन, ब्रैनफोर्ड, किचनर, कैम्ब्रिज, गोल्फ, पिकरिंग, ओशावा, न्यू मार्केट, विंसर, सार्निया, लंदन, बेलविल, ब्रॉकविल, किंगस्टन, पीटर्सबरो, बैरी पाई, यानी कोई इलाका छोड़ भी दो तो उधर कहते हैं जी उधर सारा ये हैजर्डस ड्राइविंग होएगा, तो आपको बहुत ही एहतियात से चलना है क्योंकि नियर जीरो विजिबिलिटी हो सकती है। वो कहते हैं जी अगर ऐसा होए तो आप अपना हेडलाइट्स जो है उनको गाड़ी का ऑन करें और एक सेफ डिस्टेंस रखें आगे वाली गाड़ी से। तो ये जनाब बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। अच्छा जनाब, पेंटागन जो है और व्हाइट हाउस जो है उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया तेहरान को, यानी कि ईरान को, और उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो हुथीज हम पे कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं रेड सी के अंदर, इसको बैकिंग है ईरान की। ईरान ने इस चीज को बिल्कुल डिनाई किया है। आज ईरान के जो डेप्यूटी फॉरन मिनिस्टर हैं अली बागेरी, उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ एक एक्यूजेशन है। हुथीज जो है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 ड्रोन एंड मिसल्स उन्होंने जो मर्चेंट शिप्स हैं तकरीबन 10 के करीब जो रेड सी में से गुजर रहे थे उनको टारगेट किया था, तो उसके बारे में पेंटागन ने और व्हाइट हाउस ने कहा था कि ईरान की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, कि वो इनको वेपन्स दे रहे हैं। ईरान ने आज इसके ऊपर बात करते हुए कहा है कि हुतीज जो हैं वो अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, अपने एक्ट्स जो हैं उनके भी वो खुद मालिक हैं, उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है और वो क्या कर सकते हैं उसके वो डिसीजन खुद लेते हैं। ईरान जो है सिर्फ उनको पॉलिटिकल सपोर्ट देता है, वेपन्स नहीं देता है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान ने कहा है कि यूएस को और उसके एलाइज को पता होना चाहिए कि इस रीजन के अंदर जो हैं वो अलायंसेज हैं और यहां पे रेजिस्टेंस भी शो की जाएगी, लेकिन इसमें ईरान को घसीटने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये उन्होंने जी कहा है। ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर जनरल हैं रजी मुसफी, उनके बारे में अलेजली ईरान ने कहा है कि इनको भी जो है एक साजिश के तहत मारा गया है। इस दफा उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो इसराइल के ऊपर लगाए हैं कि ये डमास्कस में थे और इसराइल की स्ट्राइक जो सीरिया पे उन्होंने की है उसमें ये जो है मारे गए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके जनरल थे जो कि ये सारी स्ट्रेटेजिक जो वॉर होती थी जो डिसीजंस वो ये बनाते थे। तेहरान की ऑफिशियल जो इरना न्यूज एजेंसी है उन्होंने कहा कि मुसवी साहब को ये जो है एक जायनिस्ट रिजीम ने जो है मारा है ज़ेनबिया के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि सबर्ब है डमास्कस का, और वो कहते हैं जी कि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस एडवाइजर्स ऑफ कुद्स फोर्स जो है इनकी उसके लिए। और वो कहते हैं जी कि ये जो हैं इनके बारे में बताया जाता है कि ये जो कासिम सुलेमानी जो इनके जनरल थे ईरान के, जिनको कि बगदाद में यूएस ड्रोन अटैक में 2020 में मारा गया था, उसके बहुत क्लोज एल आए थे ये, और ये उस वक्त एग्जैक्टली इनको भी मारा गया है जब ईरान प्रिपेयर कर रहा है कि नेक्स्ट वीक फोर्थ असेसिनेशन एनिवर्सरी जो जनरल कासिम सुलेमानी की जो है वो मनाने के लिए वो तैयारी कर रहा था, तो जबकि उनके इस दूसरे जनरल को भी मार दिया गया है। तो उसके ऊपर आज ईरान ने बहुत ज्यादा शोर मचाया है फिर से, और ईरान ने फिर से कहा है कि ये जो हरकतें आप कर रहे हैं आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आज जो क्रिसमस है, कार्डिनल पियर बेटिस्टा पिज़ाबेला, लैटिन पेट्रियार्क ऑफ जेरूसलम जो हैं, उन्होंने आज बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया है, और वहां पे बात करते हुए जो कार्डिनल थे उन्होंने कहा जी कि मुझे बाइबल में से एक वर्स याद आ गई है कि मैरी और जोसेफ जिस वक्त बेथलहम में पहुंचे, क्योंकि मैरी को जो है वो डिलीवरी देनी थी लॉर्ड जीसस की, तो वहां पे कोई जगह नहीं थी, तो एक मैंजर के अंदर जाके उन्होंने बच्चे को पैदा किया जीसस को। तो 5,000 के करीब जो है क्रिसमस के जो मिड नाइट मैस होता है सर्विस उसमें लोग जमा हुए थे, जिससे कि ये कार्डिनल्स खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि यहां पे बेथलहम में जहां पे के जीसस को बिलीव किया जाता है कि वो पैदा हुए थे, तो उस वक्त देयर वॉज नो रूम टू गिव बर्थ टू जीसस यहां पे। तो वो कहते हैं जी कि मुझे लग रहा है कि आज भी जो गाजन्स हैं, जो गाजा के लोग हैं, उनके लिए भी कोई भी जगह नहीं रही है सेफ यानी रहने के लिए। तो क्रिसमस सेलिब्रेशन जो थी वो बिल्कुल कैंसिल की गई थी, क्योंकि आज जो यहां के जो कार्डिनल पिज्जा बेला है उन्होंने कहा जी कि 20,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को इजरायली अटैक्स में मारा जा चुका है, इसलिए कि क्रिसमस नहीं मनाई जाएगी। और उन्होंने कहा जी कि ये वैसे तो संडे के दिन से ही यहां पे ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में पिलग्रिम्स आना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, क्रिसमस का म्यूजिक चल रहा होता है, लेकिन आज बेथलहम के अंदर तमाम की तमाम शॉप्स और रेस्टोरेंट्स जो थे वो बंद थे और मैंजर स्क्वेयर जो था जो विच इज नेक्स्ट टू चर्च ऑफ नेटिविटी वहां पर भी बहुत ज्यादा ना तो डेकोरेशन थी, जहां पर कहा जाता है कि जी एग्जैक्ट प्लेस है जहां पर जीसस की पैदाइश हुई थी, कोई डेकोरेशन नहीं थी, बिल्कुल बड़ा सैड और खामोश माहौल था। फॉर फर्स्ट टाइम वो कहते हैं जी इन द लिविंग मेमोरी कोई क्रिसमस ट्री नहीं था, कोई सेलिब्रेशंस नहीं थे, कोई परेड नहीं थी और कैथोलिक मिडनाइट मैस जो होता है एट सेंट कैथरीन चर्च वो भी बहुत ही छोटा सा जो है वो देखा गया है। और वैसे तो इसकी जगह जो होती है वो मंथ्स इन एडवांस बुक की जाती है और उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन कोई इसमें ज्यादा आज लोग नहीं थे और जो वो यूजुअल प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी स्क्रैप किया गया था। प्रेयर सर्विस जो थी वो हर किसी के लिए ओपन की गई थी, बहुत सारे ज्यूज जो थे वहां पे आज ब्लैक एंड व्हाइट वो जो कफिया वो जो कपड़ा पहनकर अपने आते हैं ये पैलेस्टीनियंस के साथ जो एसोसिएट किया जाता है वो पहन के यहां पे आए हुए थे। इस मौके पे पोप फ्रांसिस जो है उन्होंने भी इसराइल के ये जो अटैक्स हैं पैलेस्टीनियन सिविलियंस पे बहुत कंडेम किए और उन्होंने क्रिसमस डे जो है उसमें गुजारा सेंट पीटर्स बेसिलिया में वेटिकन के अंदर लोगों को ब्लेस करने में और उन्होंने फिर से मैसेज दिया कि भाई दुनिया के अंदर पीस आना चाहिए। इंडोनेशिया के अंदर जनाब एक जो निकल प्रोसेसिंग प्लांट है विच इज चाइनीज फंडेड उसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ जिसमें कि 12 लोगों की डेथ हुई और 51 के करीब जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। और दिस प्लांट इज ओन्ड बाय पीटी इंडोनेशिया सिंग शैम स्टेनलेस स्टील मोरोवी इंडस्ट्रियल पार्क सेंट्रल सुलेवेसी जो प्रोविंस है उसके अंदर ये है, जिसके अंदर वो कहते हैं जी 7 इंडोनेशियंस और 5 जो फॉरेन वर्कर्स थे उनकी डेथ हुई। तो ये जो फॉरेन वर्कर्स थे ये तमाम चाइनीज थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है कि यहां पे बिठाई गई है और वहां पे वो कहते हैं जी कि एक फर्नेस जो था उसके अंदर आग लग गई थी और उसके साथ जो लिक्विड पड़ी हुई थी उसको भी फिर आग लगी और फिर ऑक्सीजन टैंक्स ने आग पकड़ी और फिर हौले हौले होते होते ये आग जो है फैलते चली गई। लेकिन अब न्यूज आई है थोड़ी देर पहले कि इस आग को बुझा लिया गया है। बहुत बड़ी ये यहां पे ये जो प्रोसेसिंग निकल प्रोसेसिंग प्लांट था इसमें ये थी। और जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ग्रिल एंड चिक। ग्रिल एंड चिक आपको पता ही है कि पहले ब्रैम्पटन में थे, अब ये मिसिसागा के अंदर आ गए हैं। 3525 प्लैटिनम ड्राइव मिसिसागा में हैं और अगर आपको आज छुट्टी अगर आप घर पे मना रहे हैं और आपको मजे का खाना खाना है ये ग्रिल्ड तो आप इनको ऑर्डर डाल सकते हैं 905-606-2345। इसके अलावा जनाब नानन कबोब के भी बड़े जबरदस्त ग्रिल्ड खाने होते हैं और हेल्दी होते हैं, तो इनके भी अगर आपको आज ऑर्डर डालना है अगर आप घर पे बैठे हुए हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 8416285-8191। ये दे आर लोकेटेड एट 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 मिसिसागा। ठीक है जी, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। आज जनाब ISPR की एक प्रेस रिलीज आई है और इसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो हेल बेंट हैं कि इस मुल्क के अंदर रिलीजियस एथनिक और पॉलिटिकल जो रिफ्ट्स हैं और वल्नरेबिलिटीज हैं उनको एक्सप्लॉयट किया जाए और पाकिस्तानियों के अंदर जो है लड़ाई झगड़े जो हैं वो पैदा किए जाएं। वो आज एक खिताब कर रहे थे उस वक्त जिस वक्त ये क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस की सेलिब्रेशंस चल रही थी, तो उसको अटेंड करने के लिए ये गए हुए थे। उन्होंने बहुत ज्यादा वेलकम किया इन फेस्टिविटीज को, मेरी क्रिसमस का क्रिश्चियन कम्युनिटी को, और उन्होंने कहा कि बहुत उनकी तारीफ की और उनका कहा जी कि हम इस्लाम जो है वो इंटरफेथ हार्मनी की बात करता है और जिना साहब का जो विजन है उसके मुताबिक हमको पाकिस्तान को चलाने की जरूरत है। इस्लाम जो है दोस्ती पीस की बात करता है जो कि अब हमको इस मुल्क में और बढ़ावा देने की उसकी जरूरत है. वो कहते हैं जी कि हमको एक नॉलेज बेस्ड ओपिनियन देने की जरूरत है. रैंडम ओपिनियंस एक दूसरे के खिलाफ देना, रेटरिक और प्रोपेगेंडा करना, उससे मुश्किलें पैदा होती हैं. उन्होंने अजना साहब को भी बहुत जो है उनकी भी प्रेज की ऑन हिज 147th बर्थडे. और उनकी एक स्पीच जो अगस्त 11, 1947 को जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एड्रेस करते हुए कही थी, उसका फिर से आसिम मुनीर साहब ने जिक्र किया. उन्होंने कहा जी जिना साहब ने जिस वक्त स्पीच की थी तो उन्होंने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान. और इसके अलावा उन्होंने एक्नॉलेज की इनकी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की कॉन्ट्रीब्यूशन और सेक्रीफाइसेज हैं, और उन्होंने कहा जी कि हर फील्ड में इनका बड़ा जो है योगदान है. इसके अलावा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर्स जो है उन्होंने भी अजना साहब को याद किया और क्रिसमस की भी बधाइयां दी कम्युनिटी को. पाकिस्तान में बीबी जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि अब ये जो बेतहाशा सब्सिडीज दी जाती हैं अलीट को, इनको खत्म करके ये सारे का सारा पैसा लेबरर्स और फार्मर्स को देना चाहिए. आज नवाबशाह में ये बात कर रहे थे जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि 300 बिलियन रुपीज के करीब जो है वो स्पेंड किया जाता है मिनिस्ट्रीज के ऊपर, 1500 बिलियन रुपीज जो है उसकी सब्सिडीज दी जाती हैं अलीट सेक्टर को, खासतौर पर जो काम कर रहे हैं एनर्जी, फर्टिलाइजर और दूसरे सेक्टर्स में. उन्होंने कहा जी कि मैं वादा करता हूं कि मैं 17 फेडरल मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको बिल्कुल खत्म कर दूंगा अगर हम इलेक्शन जीत के आए February 8, 2024 का, और पुराने पॉलिटिशियंस जो हैं दे आर द थिंग ऑफ पास्ट, और अब जो नौजवान हैं उनको पॉलिटिक्स को आगे लेके जाना पड़ेगा और दे हैव टू बरी द पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड एंड डिविजन. उन्होंने कहा जी कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी एंड अदर्स, तो हमको जो है इन सब चैलेंजेस को खत्म करना पड़ेगा, और मैंने बहुत काम किया है जो हमारा यूथ है उसको ओवरसीज जॉब्स लेके देने के लिए, और पीपीपी का जो स्लोगन है रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए शायद पहले लोगों को इतनी ज्यादा बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत नहीं थी लेकिन आज जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. वो कहते हैं जी 10 साल पहले जो फैमिली 35,000 रुपीज बनाती थी पर मंथ वो भी बहुत आराम से रहती थी, आज 70,000 बनाने वाला भी आराम से नहीं रह रहा है. तो जो भी कोई इनकमिंग गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि जैसे ही वो आए तो वो एंश्योर करे कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये जो लोगों की तनख्वाह है ये डबल हो जाए ताकि इन्फ्लेशन से जो मुश्किलात हैं लोगों की उसके ऊपर काबू पा सके. इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये साइफर केस जो है, मैं खुद फॉरेन मिनिस्टर था मुझे पता है कि ये एक जो है वो डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो जो कि स्टेट के लिए होता है, तो उसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाने की जरूरत है. आज पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने यह कहा है कि पाकिस्तान के अंदर सुइसाइड बॉम्बिंग्स जो हैं वो बेतहाशा 2023 में बढ़ गई हैं, और ये हाईएस्ट हैं कंपेयर टू 2014. उन्होंने कहा जी कि इस साल में 329 जो हैं मारे गए हैं, 582 इंजर हुए हैं. इन 2013 683 लोगों की डेथ हुई थी, 47 सुइसाइड बॉम्बिंग्स हुई थी, जिसका के मतलब है कि ये 93% इंक्रीज आया है सुइसाइड बॉम्बिंग्स के अंदर, एंड 226% राइज इन डेथ्स एंड 101% राइज इन इंजर्ड. उन्होंने कहा जी कि 623 मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं अभी तक 2023 में कंपेयर टू 380 इन 2022, और 2022 में 15 सुइसाइड अटैक्स हुए थे. तो इसलिए ये जो सुइसाइड अटैक्स हैं ये 2022 से 3.9% ऊपर गए हैं टू 4.7%. सबसे ज्यादा अटैक्स जो हैं केपी में हुए हैं 23, जिसमें के 254 लोगों की डेथ हुई है, 512 इंजर्ड. बलूचिस्तान में 5 अटैक्स हुए हैं जिसमें 67 डेथ्स, 52 इंजर्ड. सिंध के अंदर 1 सुइसाइड अटैक हुआ है, 8 डेथ्स एंड 18 इंजर्ड. तो ये सारे आज खुलासे जी किए हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने. और जनाब जो पीटीआई है उसको पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि उनको दीवार के साथ लगाया जाए. उनकी औरतें अलेजली जो जाती हैं सिंबल्स लेने के लिए या नॉमिनेशन पेपर्स भरने के लिए, तो उनको भी हरास किया जाता है, बाकी लोगों को भी किया जाता है. तो अब जो है इनको बैट भी नहीं दिया जा रहा पीटीआई को, जो कि उनका इलेक्शन सिंबल था. इसके ऊपर बात करते हुए आज पीटीआई के जो सेंट्रल स्पोक्स पर्सन मौजम भट्ट हैं उन्होंने कहा जी कि अब हम एक पिटीशन कल जो है वो पिशावर हाईकोर्ट में डालेंगे, क्योंकि ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था और पोल जो का जो इनका सिंबल था बैट इसको रिवोक किया था. बट साहब ने कहा जी कि हम अब कोशिश करेंगे कि अपील कोर्ट जो है इसको ईसीपी के डिसीजन को नलीफाई करे, और ये जो ईसीपी ने जो कुछ किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है. ईसीपी ने इससे पहले कहा था कि जो कुछ इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शंस पीटीआई ने कराए हैं दे आर नॉट इन लाइन विद द रूल्स, और ये जो इन्होंने इलेक्ट किया था बैरिस्टर गौहर मुजफ्फर खान को एज चेयरमैन पीटीआई वो इलीगल है। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है मजहर अब्बास, उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज से पहले जो ईसीपी थी उसने आज तक कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल पोल्स को अनलॉफुल नहीं कहा था। तो इस तरह ये नजर आता है कि पीटीआई जो है वो इट इज कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक एंड देर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड। पीटीआई पी के मीनवाइल जो चीफ प्रवेश खटक साहब हैं उनका ये अलेजली कहना है कि मुझे जो है अलेजली ऑफर किया गया था बैट, लेकिन मैंने ये सिंबल जो है टर्न डाउन किया है। बहरहाल अब ये पीटीआई के पास बल्ला वापस आएगा निशान या नहीं, इसके ऊपर जो है हम जो है जैसे जैसे हमारे पास कल ये पिटीशन जब डलेगी तो जो नई डेवलपमेंट्स होंगी उसके ऊपर फिर हम जो है आपके साथ बात आगे करेंगे। और जनाब ये स्पेशल रिपोर्ट एक हम आपसे करेंगे राइट एट द एंड ऑफ द न्यूज ऑन जिना साहब, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स का आज एक जबरदस्त किस्म का आर्टिकल है जो कि लिखा गया है, जिसके के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जी, और इसके मुताबिक ये जो निकरागवा बाउंड एयरबस A340 थी जिसके के अंदर 303 इंडियंस जो है वो सफर कर रहे थे, जिसको कि ग्राउंड किया गया था लास्ट वीक फ्रांस के अंदर ऑन सस्पिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये जो है वैट्री के एयरपोर्ट से अब चल पड़ा है और इंडिया जो है वो रवाना हो गया है। और फ्रांस ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की थी और इसके आंकड़े जो हैं एक बहुत बड़ा जो किंग पिन है, जो गैंगस्टर है शशि किरण रेड्डी, उससे जाके गुजरात में मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया वो कहते हैं जी कि ये उन्होंने साइट किए हैं इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी के सोर्सेज, जिसके के मुताबिक रेड्डी साहब जो हैं ये लास्ट ईयर जो डिंगूचा का केस था उसके साथ भी अलेजली जो हैं रिलेटेड हैं। और गुजरात पुलिस जो थी उसने इसको फिर जाने दिया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, लेकिन वो कहते हैं जी कि टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी कि ये किसी ना किसी तरह कनेक्टेड हैं। ये जो कहते हैं जी कि ये जहाज जो जिसमें कि 303 इंडियंस थे, 96 इसमें से गुजरात से थे, और लास्ट ईयर भी जनवरी में 4 फैमिली मेंबर्स जो कि आपको पता ही है जगदीश पटेल 39, वैशाली उनकी बीवी 37, उनके दो बच्चे वेहंग 11 साल का और धर्मिक 3 साल का, ये जो कनाडा का इमर्सन बॉर्डर है उस पर बिल्कुल सर्दी में अकड़े हुए और मरे हुए पाए गए थे, क्योंकि ये इलीगली कनाडा से क्रॉस करके यूएस के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। जगदीश का जो भाई था महिंद्रा, उसने ये ट्रिप जो था ऑर्गेनाइज किया था, और महिंद्रा के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज वर्किंग वेरी क्लोजली विथ शशि किरण रेड्डी, और ये जो नेटवर्क है सारा ये इन्होंने हजारों ही इंडियंस को गुजरात से यूएसए में पहुंचाया है और इलीगली, और ये जो है ह्यूमन स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं और हेल्प करते हैं इनको कनाडा का बॉर्डर जो है वो क्रॉस करके यूएसए के लिए जाने के लिए। इस सिलसिले में 3 लोगों को इंडियन पुलिस ने आज अरेस्ट किया है, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये जो रेड्डी का ह्यूमन स्मगलिंग का नेटवर्क है ये पिछले 15 साल से चल रहा है, और इसके अंदर वो फ्लाइट्स अरेंज करते हैं इंडिया से दुबई और दुबई से फिर वो निकरागुआ और उससे आगे फिर जो है जहां पर इनको भेजना होता है कनाडा या अमेरिका वहां लेके जाते हैं। तो फ्रांस जो है उसमें पैसेंजर्स जो थे उसको उनको ये क्वेश्चन किया गया था फॉर 2 डेज के बताएं कि ये सारा क्या नेटवर्क है। तो अब ये जो है प्रोब उन्होंने कहा है कि हम इंडिया को भी कहेंगे बिठाने के लिए। इंडियन आर्मी जो है उसकी बहुत ज्यादा आज उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उसकी वजह यह है कि एक वीडियो जो है वो वायरल हो गया है, जम्मू और कश्मीर का जो पुंछ एरिया है उसमें जो 3 सिविलियंस को इंडियन आर्मी ने पकड़ा था और बेतहाशा उनको टॉर्चर करके जो वो मरे हुए पाए गए थे उसके ऊपर आज जो है सवाल उठाए गए हैं, जिसकी वजह से इंडियन मिलिट्री को अब एक्शन लेना पड़ा है। 5 लोग जो थे इन्होंने उठाए थे और उनको इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि उनको जो है वो उनकी डेथ्स हो गई, और जिस वक्त उनके घर वालों को उनकी लाशें मिली तो वो सीरियसली इंजर्ड थे वो लोग। ये जो वीडियोस आई थी इसमें दिखाई जा रही है कि इंडियन मिलिट्री कैसे ब्रूटैलिटी इनके साथ कर रही है। वो लोग जो हैं वो बेग कर रहे हैं यहां पे इस इधर जो मिलिट्री के ये जो सोल्जर्स हैं उनसे कि हमको छोड़ दो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इनको उठाया गया था, ये जो सारे लोग थे गुज्जर बकरवाल स्केड्यूल्ड कास्ट के ये लोग थे, और जिस वक्त 4 आर्मी के मेन जो थे एक एम्बुश में मारे गए थे उस सिलसिले में मिलिट्री ने जो बंदे उठाने शुरू किए थे उसमें ये लोग थे। इनकी उम्रें जो थी 27 से लेके 42 की थी, और फिर इनको जो है जब इनकी बॉडीज जो हैं सफीर हुसैन 48, मोहम्मद शौकत 28, शब्बीर अहमद 25, इनकी और एक जो साहब है उनकी 42 इयर्स एज थी. इन सबको जिस वक्त देखा गया और इनकी फैमिलीज तक पहुंची ये बॉडीज, तो उनको पता चला कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर है, जिसकी की वजह से उन्होंने मीडिया से बात की. उसके बाद जो है देखा जा रहा है उसके अंदर जो वीडियो भी सामने आई है कि इनको बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा जा रहा है और इनके जो जख्म है उनके ऊपर मिर्ची छिड़की जा रही है, जो कि वो कहते हैं जी कि एक टैक्टिक है इंडियन मिलिट्री का जो वे करते हैं. टोबा पीर विलेज में जो है ये एक है जहां जो कि बिल्कुल ही दुनिया की नजरों से आप समझ सकते हैं कि छुपा हुआ विलेज है. यहां पे बड़ी हैवी मिलिट्री की प्रेजेंस है इस वक्त. इंटरनेट यहां पे शट किया गया है और ये जो बॉडीज थी 48 राष्ट्रीय राइफल्स ने उनके रिलेटिव्स को दी थी और उसके बाद से जो विलेज है वो सारा वो बहुत ज्यादा जो है बिफरा हुआ है. लेकिन किसी को किसी के साथ अफसोस करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही और सारे जो घर हैं उनको भी कॉर्डन ऑफ मिलिट्री ने किया हुआ है. लेकिन बहरहाल जी ये इतनी ज्यादा इसके ऊपर हिंदुस्तान में शोर मचाया कि मिलिट्री ने अब इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई है. बहरहाल ये तो वो केस है जी जो सामने आ गया, जो हजारों ही कश्मीरी मारे हैं इन्होंने एलिजली, वो उसके ऊपर तो ना तो कोई प्रोब बिठाई गई है ना किसी को सजा दी गई है. और जनाब वीकेंड के ऊपर आई शाहरुख खान की डंकी. हमने आपको बताया ही था कि उसका बड़ा इंतजार था लोगों को, राजकुमार हिरानी की फिल्म थी. इसके ऊपर आज जो है हंसल मेहता साहब, वो भी फिल्म मेकर हैं बड़े जबरदस्त, उन्होंने ये फिल्म देखी है और उसके ऊपर बड़े अच्छे रिव्यूज दिए हैं. उन्होंने कहा जी कि ये फिल्म फूल प्रूफ तो नहीं है, परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है. ये वो चीज है जो आजकल हम अपनी मूवीज में हिंदी फिल्मों में जो है मिस करते हैं. बड़ा नॉस्टैल्जिक है, हार्टफेल्ट है, सिंपल है और ये एक टिपिकल राजकुमारी राजकुमार हिरानी फिल्म है. और वो कहते हैं जी कि मेरा तो दिल जो है शाहरुख खान की एक्टिंग के ऊपर जो है वो जा रहा था कि कितनी उसने जबरदस्त की और बाकी का भी जो एंसेंबल है यानी कि बाकी के भी जो स्टार्स हैं बड़ी जबरदस्त उन्होंने जो है इसके अंदर एक्टिंग की है. तो वो कहते हैं जी कि इट इज नॉट ड्रामा, इट इज नॉट कॉमेडी, इट इज नॉट ट्रेजेडी, इट इज नॉट थ्रिलर. और उन्होंने हर किसी को कहा है कि भाई आप में से हर बंदा जो है ये फिल्म जाके देखे क्योंकि ये इतनी ही कोई अमेजिंग फिल्म है. इसके अलावा जनाब आपको पता ही, हमने आपको वीकेंड में बताया था कि साक्षी मलिक जो कि वन ऑफ द टॉप रेसलर्स हैं इंडिया की, उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अब वो रेसलिंग नहीं करेंगी. आज एक और टॉप इंडियन मेल रेसलर जिसको के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला हुआ है हिंदुस्तान में, उसने अपना अवार्ड भी वापस किया है और उसने भी कहा है कि अगर ये जो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के हेड जो हैं ये ब्रिजभूषण सिंह के दोस्त जो हैं वो रहेंगे तो हम जो है इसका हिस्सा नहीं रहेंगे. ये जो है टॉप रेसलर, इनका नाम है बजरंग पूनिया और ये फर्स्ट इंडियन रेसलर थे जिन्होंने के 4 वर्ल्ड चैंपियंस जीती थी, जिसके के ऊपर इनको फिर पद्मश्री दिया गया था जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बाय इंडियन प्रेसिडेंट. और ये इनको मिला था 2019 पे. अपने एक्स पे एक लेटर इन्होंने जो है मोदी जी को लिखा है और उन्होंने कहा जी कि मैं इस रिस्पेक्ट के साथ जो मुझे दी गई थी उसमें मैं नहीं हिंदुस्तान में रह सकता, एक ऐसे मुल्क में जहां के विमेन रेसलर्स जो हैं उनको इंसल्ट किया जाता है, तो इसलिए मैं अपना जो ये पद्मश्री है ये मैं वापस कर रहा हूं. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है इंडिया में अब इतना जब शोर मचा है तो उन्होंने ये जो न्यूली इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी जो थी इसको सस्पेंड कर दिया है और इसमें जो संजय सिंह को इलेक्ट किया गया था इनकी जगह पे ये जो है ब्रिजभूषण सिंह की जगह पे इनको भी कहा है कि ये भी जो है ये अभी अपना चार्ट जो है वो नहीं संभाल सकते हैं. इन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कहा है कि एक पूरा टेम्पररी पैनल बनाया जाए जो कि इस वक्त जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को चलाएगा. और ये इनके ऊपर आपको पता ही है ब्रिजभूषण के ऊपर जो फीमेल रेस्टलर्स थी उन्होंने सेक्शुअल हरासमेंट के केसेस डाले थे और एक दिल्ली के अंदर सिट इन भी किया था अर्लियर दिस ईयर और उनको कहा था कि ब्रिजभूषण साहब को हटाया जाए वरना हम रेसलिंग नहीं करेंगी. और सिंह जो है वो वैसे बीजेपी के पार्लियामेंटेरियन है और 6 दफा वो जो है जीते हैं और उन्होंने ये एलिगेशन को रिजेक्ट किया था. लेकिन जो विमेन रेसलर्स हैं वो कहती हैं कि नहीं. तो अब इनके ये जो क्लोज साथी जो हैं संजय सिंह, इनको जिस वक्त बनाया गया प्रेसिडेंट तो तब उसके ऊपर साक्षी मलिक ने भी छोड़ा था और उसके बाद आज बजरंग पूनिया ने भी उसके ऊपर फिर एक्शन लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने कहा है कि अभी तमाम के तमाम रेसलिंग फेडरेशन के जो एक्टिविटीज हैं उनको सस्पेंड किया जाए जब तक ये मामला ना हो जाए, खत्म ना हो जाए. उस्मान ख्वाजा साहब आपको पता ही है कि उन्होंने अपने बूटों के ऊपर लिखा था कि भाई फ्रीडम इज ह्यूमन राइट्स एंड ऑल लाइव्स मैटर, तो उनको पेन नहीं दिया गया था. फिर उन्होंने काली पट्टी पेन के वो आगे थे और आईसीसी ने उसका भी बहुत बुरा मनाया था. उन्होंने कहा था कि आपको पूछना चाहिए था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से और आईसीसी से, आप काली पट्टी पहन के पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हो रहा था उसमें आप कैसे खेलने के लिए आ रहे थे. आज इनकी सपोर्ट के लिए वेस्ट इंडियन बॉलिंग लेजेंड माइकल होल्डिंग जो हैं वो आगे हैं और उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा फियास्को जो है वो मैं फॉलो कर रहा हूं और अगर ये कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन होती जो कि इस तरह की बेहुदा हरकतें कर रही होती तो मैं कहता कि ये ठीक है, वो तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं कर रही, लेकिन आईसीसी जैसा अदारा जो है वो ये कर रहा है तो मुझे बहुत ही ज्यादा हैरत हो रही है कि वो कैसे कर सकते हैं. और वो आईसीसी ने इसके अंदर हिपोक्रेसी शो की है एंड लैक ऑफ मॉरल स्टैंडिंग जो है वो शो की है. अगर आईसीसी कहता है, माइकल होल्डिंग का पूछना है कि अगर आईसीसी कहता है कि हमारे रेगुलेशंस में अप्रूवल नहीं है पॉलिटिकल रिलीजियस रेशियल एक्टिविटीज का, तो फिर इन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए कैसे प्लेयर्स को नी लेने दी थी और इन्होंने कैसे फिर वो जो स्टंप्स थे उनको एलजीबीटी के कलर्स में लगाया था. तो अगर ये ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए पीपल कैन टेक नी एंड वो एलजीबीटी के कलर्स में आप स्टंप्स लगा सकते हैं, तो फिर एक पैलेस्टीनियंस के लिए एक लड़का अगर उनके लिए कुछ बताना चाहता है तो उसको क्यों नहीं कहा जा रहा, क्योंकि ये दिस इज द मैटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम और उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट. और जो इन्होंने ये जो कुछ भी आईसीसी ने किया ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, उन्होंने बहुत ज्यादा आईसीसी को क्रिटिसाइज किया. एंड जनाब एब्सोल्यूटली आवर लास्ट न्यूज बिफोर दैट के हम जाएं अपनी स्पेशल रिपोर्ट पे, हम आपको अपनी आज की आखिरी खबर सुनाएंगे. पीसीबी ने डिसाइड किया है कि जी जो फॉर्मर जो ऑलराउंडर हैं यासिर अराफात उनको हाई परफॉर्मेंस कोच के लिए हायर किया जाएगा T20 टीम के लिए और वो जो हैं रिप्लेस करेंगे ऑस्ट्रेलियन कोच साइमन हेलमट को और ऑकलैंड ट्रैवल करके जाएंगे T20 टीम के साथ January 3 से जब से सीरीज शुरू होगी और सीरीज शुरू होने से पहले वहां पे जाएंगे. सीरीज शुरू हो रही है January 12 से और January 21 तक ये जारी रहेगी. इनको रिकमेंड किया था जो टीम के डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज ने अपॉइंट करने के लिए और ये अब इस्लामाबाद लंदन से पहुंच गए हैं और इनिशियली इनको अपॉइंट किया था पाकिस्तान की U19 बॉलिंग कोचिंग के लिए साउथ अफ्रीका के लिए और इन्होंने जो है क्लब क्रिकेट न्यूजीलैंड में खेली हुई है. ये जो है इन्होंने 27 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं इंक्लूडिंग 13 T20s. ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ पाक स्क्वाड दैट वन 2009 T20 वर्ल्ड कप, लेकिन उसके अंदर इन्होंने एक ही मैच खेला था, लेकिन चूंकि इन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर खेला है तो इसलिए अब इनको जो है वो लेके जाया जा रहा है. तो जनाब ये थी हमारी खबरें एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद हम जाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ ऑन कायदे आजम मोहम्मद अली जिना.
जेकर घर दे पुराने डाइनिंग टेबल ते बैठ के तुसी ए सोच रहे हो कि हुण नवा फर्नीचर लैण दा टाइम आ गया तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि sodifurniture.com वेबसाइट ते बॉक्सिंग डे सेल लग चुकी है. sodifurniture.com ते तुसी 31 दिसंबर तक एक्सप्लोर कर सकदे हो ओवर 1000 फर्नीचर कॉम्बिनेशंस एट अनबीटेबल क्लियर आउट प्राइसेस.
सर्विंग फ्रॉम 39 इयर्स 3000 स्क्वायर फुट विच इन अदर शोरूम है, प्राइस मैच भी करेंगे. इन अदर स्टाइलिश फर्नीचर sodifurniture.com ते जाके तुसी देख सकदे हो. फॉर बेस्ट बॉक्सिंग डे सेल विजिट 142 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन और कॉल 905-874-7171.
हेलो जी एंड वेलकम बैक. जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि आज एक स्पेशल रिपोर्ट हम करेंगे जिना साहब के ऊपर और ये स्पेशल रिपोर्ट जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है और कुछ अर्सा पहले ये आई थी, इट्स नॉट रियली द लेटेस्ट वन, लेकिन ये हम कवर नहीं हमने कभी की थी. तो आज जब मैं स्क्रोल कर रही थी कि जिना साहब के ऊपर कोई अच्छी सी उनकी लाइफ के ऊपर किसी ने स्टोरी लिखी हो तो वो करें, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की ये स्टोरी मुझे नजर आई. बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी हुई है, बहुत लंबी है, लेकिन उसमें से कुछ मेन चीजें जो है मैंने निकाली हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि वो आदमी क्या था, उसका क्या कैरेक्टर था, उसकी क्या सोच थी, किस तरह का था और उसने क्या सेक्रीफाइस किया इस नेशन के लिए और आज हम जो हैं पूरे उसके आइडिया की कैसे खिल्ली उठा के हम बैठे हुए हैं. अपनी डेड डेड ईंट की हमने मस्जिदें बनाई हुई हैं और मजाक एक मचाया हुआ इस कंट्री के अंदर. तो आज आप ये जब सुनेंगे तो शायद आपको फिर से वो मेमोरीज रिवाइव करें कि जिसके के लिए इतने लोगों ने सेक्रीफाइस किया, ये एक मुल्क बनाया और हम इस मुल्क की कदर नहीं कर रहे. अच्छा जनाब न्यूयॉर्क टाइम्स की ये स्टोरी जो है ये शुरू होती है इस्लाम से. वो कहते हैं जी कि इस्लाम जो है उसने इंडिया के मुसलमानों को तीन चीजें दी थी. एक तो उसको आइडेंटिटी दी थी, एक तो उनको डायनेस्टीज दी थी मुगल्स की तरह की जिन्होंने उनके लिए एक टेरिटरी क्रिएट की थी, और फिर इकबाल जो थे उन्होंने इनके अंदर एक सेंस ऑफ डेस्टिनी पैदा की थी. तो जिना साहब जो हैं उन्होंने जब पाकिस्तान मूवमेंट को लीड किया और एक स्टेट क्रिएट की तो उन्होंने ये तमाम तीनों चीजें जो हैं पाकिस्तानियों को दी. पाकिस्तानी उनको जो सिंपली कायद आजम कहते हैं या कहते हैं ग्रेटेस्ट लीडर कहते हैं, वो कहते हैं जी कि उनकी जो कोई भी अगर पाकिस्तान में किसी की पॉलिटिकल अफिलिएशन है, लेकिन वो आज भी समझते हैं कि कोई भी जिना जैसा नहीं है। वो कहते हैं जी कि ये इनकी जो पैदाइश से पहले ही इनके जो वालिद थे जिना भाई पूंजा, वो गुजरात से कराची शिफ्ट हो गए थे और इनकी जो फैमिली जो है वो ट्रेस करती है अपने जो डिसेंडेंट्स जो हैं उनको ईरान से, जो कि रिफ्लेक्ट करते थे शिया सुन्नी इस्माइली इन्फ्लुएंसेस। ही वाज बोर्न इन अ खोजा फैमिली, जो कि जिसको कि खाजा कहते हैं, जो कि बड़े नोबल लोग होते थे, और इनकी फैमिली के जो डिसाइपल्स हैं वो हैं इस्माइली आगा खान से। और लेकिन बाद में वो कहते हैं जी कि जिना साहब जो थे वो सुन्नी सेक्ट की तरफ फिर जो है वो चले गए थे और एक सुन्नी मुसलमान जो थे वो बन गए थे। ही वॉज वन ऑफ एट किड्स इन हिज फैमिली और इन्होंने एजुकेशन ली थी सिंध मदरसतुल इस्लाम से, फिर इनको क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल इन कराची में दाखिला दिया गया था। इनको इनकी फैमिली ने लंदन भेजा 1893 में टू ज्वाइन ग्रहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग को, लेकिन वहां पे भेजा तो इनको बिजनेस के लिए था, लेकिन इन्होंने अपना बिजनेस छोड़ के और इन्होंने लिंकन्स इन ज्वाइन कर लिया था और इन्होंने कहा था कि मैं लॉ स्टडी करना चाहता हूं। इन 1894 इन्होंने अपने नाम के साथ जो है जो इनका भाई आता था, क्योंकि आपको पता है कि सारे गुजराती जो हैं वो इसी तरह यूज करते हैं ना, धीरू भाई, ये जिना भाई, पूजा भाई, तो ये इन्होंने इनका भी नाम था मोहम्मद अली भाई, तो इन्होंने भाई हटा के बस अपना जो है अपने सरनेम से हटा दिया था। और 20 साल की उम्र में जनाब ये बैरिस्टर बन गए थे। इन 1896 ही बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू पास द एग्जाम ऑफ बैरिस्ट्री। जिना साहब जो है वो कहते हैं जी कि मैंने लिंकन्स इन इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि जिस वक्त मैं लॉ के लिए इंग्लैंड के अंदर स्कूल्स ढूंढ रहा था, तो जब मैं लिंकन्स इन गया तो मैंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनका नाम एंट्रेंस के ऊपर देखा, तो मैंने कहा इसी स्कूल में मुझे अब जो है वो दाखिला लेना है। और इसी जगह पे इंग्लैंड में इनके अंदर फिर पॉलिटिक्स के लिए पैशन आई और इन्होंने असिस्ट करना शुरू किया दादा भाई नारोजी को, जो कि फर्स्ट इंडियन एमपी थे इंग्लैंड के अंदर। ही रिटर्न टू इंडिया टू प्रैक्टिस लॉ एट बॉम्बे बार इन 1896 और इससे पहले ये उन्होंने एक स्टॉप ओवर लिया था कराची में, लेकिन इनको लगा कि बॉम्बे में जाके ये ज्यादा अच्छे जो है लॉ की प्रैक्टिस कर सकेंगे। और उस वक्त बॉम्बे के अंदर ही वॉज द ओनली मुस्लिम बैरिस्टर जो कि इतनी यंग एज में अपनी लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। वो कहते हैं जी कि ये एक टिपिकल इंडियन नेशनलिस्ट थे और बड़ी बड़ी स्पीचेस करते थे और हिंदुस्तान को ब्रिटिश से आजाद करना चाहते थे और वो चाहते थे कि मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन पारसी सब यूनाइटेड तौर पे ब्रिटिश जो है उनके खिलाफ काम करें। वंस इन अ बॉम्बे हाईकोर्ट इनको जो है ब्रिटिश जजेस इनसे जो है बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते थे और वो बार बार इनको इंटरप्ट करते थे। तो एक दफा इसी तरह एक ब्रिटिश जज वो ना तो सिर्फ बार बार इनको इंटरप्ट कर रहा था बल्कि कॉन्स्टेंटली ये जो जिरा दे रहे थे उसके ऊपर बोलते जा रहे थे रविश रविश इट्स ऑल रविश। तो जिना साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा योर ऑनर आज सारे दिन से मैंने आपके मुंह से कोई जजमेंट नहीं सुनी, सिर्फ रबिश रबिश ही कहते हुए सुना। और आप सोच सकते हैं कि उससे जज को कितना गुस्सा आया होगा। सर चार्ल्स ऑलिवेंट जो कि उस वक्त बैठे हुए थे वहां पे, वो इतने इनसे इंप्रेस हुए, ये जुडिशियल मेंबर ऑफ बॉम्बे प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे, कि उन्होंने 1901 में इनको कहा कि आप मुझे ज्वाइन कर लें और मैं आपको उस जमाने में सोचें 1940s में 1500 रुपीज पर मंथ में आपको दूंगा। जिना साहब ने वो ऑफर जो थी वो डिक्लाइन कर दी और उन्होंने कहा इतने पैसे मैं एक दिन में कमा सकता हूं और फिर उन्होंने प्रूव किया कि वो एक दिन में इतने पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं। वो कहते हैं कि इनकी पर्सनालिटी इतनी ओवरवेलमिंग थी कि ब्रिटिश जो हैं वो थ्रेटन्ड अपने आप को फील करते थे और इनके उन्होंने बहुत दफा इनको कहा कि तुम जो गोरा साहब के खिलाफ बोलते हो तुम्हारे ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा के तुमको जेल में डाला जाएगा, लेकिन ये कभी डरते नहीं थे। जो वॉयस रॉय थे लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक वो आए थे, वो तो इनसे बात नहीं करते थे, वो इतना घबराते थे कि जिरा में मुझे कहीं ये जो है हरा ही ना दें। लॉर्ड वेवल जो थे वो इनकी प्रेजेंस में अपने आप को इंतहाई अनकंफर्टेबल महसूस करते थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो तो कहते थे कि ये इंतहाई हॉटी और एरोगेंट किस्म का आदमी है, इसलिए कि उनके पास जवाब नहीं होता था जिना साहब की जो बात होती थी उसका रीजनिंग की उनके, लेकिन सब रिकग्नाइज करते थे कि ये आदमी जो है इसकी एक्सेप्शनल एबिलिटीज हैं। एडविन मॉन्टेग जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने 1917 में जिना साहब के बारे में लिखा कि जिना इज एन एक्सट्रीमली क्लेवर मैन, इट इज आउटरेज दैट सच अ मैन शुड हैव नो चांस टू रन द अफेयर्स ऑफ हिज ओन कंट्री, ही वॉज कॉल्ड अ वेरी हैंडसम मैन। एक जो बायोग्राफी लिखी है जिसको जिसका के जिक्र वॉलपर्ट साहब ने भी किया है जो कि बहुत बड़े ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, उन्होंने एक अमेरिकन प्रोफेसर के बारे में लिखा है कि वो कहते थे कि ये इंतहाई हैंडसम आदमी था, ही हैड रेवन हेयर अ मुस्टैश एंड ही लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक किचनर, लीन एज अ रेपियर, साउंडेड लाइक रोनल्ड कोलमन, ड्रेस्ड लाइक एंथनी ईडन एंड ही वॉज ऑलमोस्ट लव्ड बाई ऑल वुमेन एट फर्स्ट साइट, ही वॉज एडमायर्ड एंड एनवीड बाय मोस्ट मैन। ये उन्होंने लिखा जी। ब्रिटिश जनरल एक जो है उनकी बेगम ने एक जो डिनर हो रहा था शिमला में उसमें जिना साहब से मिलने के बाद अपनी मां को इंग्लैंड में लिखा कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि जिना के बारे में जो मैंने सुना था उससे मैं मिलूं, जब मैं मिली तो क्या ग्रेट पर्सनैलिटी है, उसकी अंग्रेजी तो अंग्रेजों से भी ज्यादा अच्छी है, इतनी ब्यूटीफुल इंग्लिश बोलता है और क्या जबरदस्त मॉडल्स की तरह के उसके मैनरिज्म है, क्लोथ्स जो है वो ड्यू मॉरियर के पहनता है, एक फिल्म स्टार लगता है और जो इंग्लिश उसकी है वो तो बर्ड्स के स्पीचेस से भी बेटर हैं। इसको हिंदुस्तान का नेक्स्ट वॉइस रॉय होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि बहुत बड़ी जो एक पोइटस थी उसका न्यूयॉर्क टाइम्स जिक्र करता है, हिंदुस्तान की सरोजनी नायडू, वो कहती हैं जी कि वो बेतहाशा इनसे मोहब्बत करती थी, बड़ी इन्फैचुएशन थी उनको, लेकिन वो कभी इनको बता नहीं सकी थी, लेकिन उनको जिना साहब से इतनी मोहब्बत थी कि उनकी मोहब्बत में पोइट्री लिखा करती थी, ऐसी पोइट्री जो कि मिल्स एंड बून के रोमांस में आपको नजर आएगी। वो कहते हैं जी कि ये इंतहाई उनके मुताबिक टॉल एंड स्टेटली थे, थिन लैंग्वेड लग्जूरियस थे और बड़ी खूबसूरत इनकी वॉक थी, बड़े जबरदस्त कपड़े पहनते थे। कहा जाता है जी न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल के मुताबिक के 200 हैंड टेलर्ड सूट्स थे, वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस्ड मेन इन द वर्ल्ड उस वक्त इनको का खिताब इनको दिया गया था। और वो कहते हैं जी कि सिर्फ दूसरे जो अच्छे बहुत हाईली ड्रेस्ड थे, सेकंड टू हिम वाज ओनली मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के वालिद साहब थे। इनकी बेटी डीना जो है वो कहती हैं जी कि ही वाज वेरी डैंडी एंड अ वेरी अट्रैक्टिव मैन और बहुत एक्स्ट्रावेगेंट इनका टेस्ट होने के बावजूद भी, और ना सिर्फ ड्रेस में बल्कि अपनी रिहाइश में भी ये बहुत केयरफुल थे। डीना कहती हैं इनकी बेटी कि एक दफा उनके वालिद साहब ने, जिना साहब ने उनको कहा कि मुसलमान अगर 10 रुपए कमाते हैं तो वो उसको खर्च कर लेते हैं एक प्रिटी स्कार्फ खरीदने में और बिरयानी खाने में, जबकि हिंदू जो है पैसे सेव करते हैं। मुसलमानों को भी ये बात जो है वो सीखनी चाहिए। इन अर्ली 1930s जिना साहब जो है वो एक बहुत ही, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी उन्होंने बना ली थी और क्या उनका स्टाइल था। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है जी कि एक लार्ज हाउस था हैम्पस्टेड लंदन के अंदर, ब्रिटिश शोफर था जो कि इनकी बेंटली गाड़ी चलाता था और इंग्लिश स्टाफ था इनके घर में नौकर और 2 कुक्स थे, एक इंडियन था एक आयरिश था, लेकिन फिर भी इनकी सिंप्लिसिटी देखें कि ये सिंपल खाना खाते थे, करी एंड राइस जो है यानी कि दाल चावल खाते थे और बिलियर्ड्स खेलने का बड़ा शौक था, सिगार्स पीने का बड़ा शौक था। बाय 1930s ये सोचें जरा कि किस कैलिबर का ये आदमी था, 40,000 रुपीज पर मंथ सिर्फ बार में ये कमाते थे जो कि बेतहाशा पैसे हैं उस जमाने के हिसाब से, शायद नवाबों के पास इतना पैसा जो था वो होता था। और उनके जो अपोनेंट्स हैं गांधी भी, वो भी इनको टॉप लॉयर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो है वो मानते थे। ही हैड पैलेशियल हाउसेज इन हैम्पस्टेड इन लंदन, एक इनका घर मलाबार हिल्स में था बॉम्बे में, एक 10 औरंगजेब रोड न्यू दिल्ली में था, और ये जो घर था 10 औरंगजेब रोड पे इसको तो एक ब्रिटिश डिजाइनर जो एडविन लुटियन था उसने डिजाइन किया था। अपनी जो फर्स्ट 2 स्पीचेस इन्होंने की थी पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1947 में, वो ये शो करती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स कि ये वेस्टर्न लिबरल सोसाइटी को इस्लामिक हिस्ट्री जो कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने जिस तरह की सोसाइटी का जिक्र किया है उसको मिला के एक सिंथेसिस की तरह की एक सोसाइटी जो है ये पाकिस्तान में देखना चाहते थे। 1938 में उन्होंने कहा जी कि जब पाकिस्तान की इन्होंने शुरू की बनाने की दौड़ जब शुरू की तो उन्होंने अपने डॉक्टर्स को कहना शुरू किया कि इनके नर्व्स के ऊपर बेतहाशा स्ट्रेन है और बहुत ज्यादा अनवेल रहना शुरू हो गए थे 1945 से। इनके जो डॉक्टर्स थे डॉक्टर जाल पाटिल और डॉक्टर दिनशाद मेहता, उन्होंने इनको कहा भी कि तुम इतना ज्यादा हार्डवर्क मत करो एंड टेक इट ईजी, लेकिन स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान हैड बिगन। और उन्होंने कहा अब मैं रुक नहीं सकता हूं, और इनको बड़े बड़े खिताब दिए जाते थे, कायदे आजम तुम हमारी नैया पार करोगे। लेकिन वो कहते हैं जी कि इनको कई दफा नाइटहुड के लिए ऑफर की गई और इन्होंने ना कर दी। 1942 में इनकी जो फेवरेट यूनिवर्सिटी थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा जी हम आपको ऑनररी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लॉज की से अवार्ड करना चाहते हैं, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं सारी जिंदगी आई हैव लिव्ड लाइक मिस्टर जिना एंड आई होप आई विल डाई एज मिस्टर जिना। और इनको ये बड़े बड़े टाइटल्स और चीजें अच्छी नहीं लगती थी, वो कहते थे प्लीज मेरे नाम के साथ कोई प्रीफिक्स ना लगाएं, कोई मुझे ये बड़े बड़े नाम देने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं जी कि हर कोई लेकिन इससे प्यार करता था, बेशक ऊपर बोलते नहीं थे लेकिन इनके दुश्मन भी इनके चार्म से दूर नहीं थे। कुछ लोग तो इनको प्यार करते थे इनकी बहुत ज्यादा आजाद सोच और बहादुरी की वजह से, लेकिन कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज भी करते थे इनके वेस्टर्न जो तरीके थे उसकी वजह से, लेकिन फिर भी हर कोई ये जरूर कहता था कि ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही इज ऑनेस्ट, ही इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग। एक दफा ऐसा हुआ कि एक खाकसार जो है उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया July 26, 1943 में, नाइफ से। वो इनके घर में जो बॉम्बे में था उसके अंदर आया, उसमें इनको जख्मी भी किया, लोग बहुत भड़क गए, लेकिन इन्होंने अपनी जनता को कहा कि भई आप काम रहें, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इवन गांधी जो थे वो इतने इंप्रेस से इनकी पर्सनालिटी से अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स कि उन्होंने भी इनको कायदे आजम कहना शुरू कर दिया था एट वन पॉइंट इन टाइम। माउंटबेटन जो थे जब वो वॉइसरॉय बन के आए 1947 में हिंदुस्तान में, तो जिना साहब वॉज डाइंग, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी को ये जो ग्रेविटी ऑफ हिज इलनेस थी किसी को देखने नहीं दी। माउंटबेटन ने बाद में अपने कन्फेशंस में लिखा कि अगर मुझे पता होता कि जिना साहब मर रहे हैं तो मैं ये सारे का सारा जो डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट है इसको मैं डिले में डाल देता और फिर पाकिस्तान कभी भी ना बन सकता। वो कहते हैं जी कि जिना साहब ने चूंकि बहुत ही बैड उनकी हेल्थ थी लेकिन फिर भी बेस्ट पॉसिबल जो है वो निगोशिएट टर्म्स करने की कोशिश की, और 1947 में एक ऐसा मुल्क बनाया जो कि नजरिए की बुनियाद पे बनाया गया था। दुनिया में दो ही कंट्रीज हैं जो कि आइडिया की बुनियाद पे बने हैं, एक पाकिस्तान और एक इसराइल। और जिना साहब जो थे इस मुल्क के पहले गवर्नर जनरल बने थे। हालांकि जिना साहब ने कहा कि ये बिल्कुल ही दीमक खाया हुआ मुल्क मुझे मिला है, जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुस्लिम नेशन का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो ये बना है। उन्होंने कराची को कैपिटल कहा और अपनी जो पहली दो स्पीचेस की उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हर कोई इस मुल्क में आजाद है, जैसे आप सब पाकिस्तानी हैं, आप अपने मंदिर में जाना चाहते हैं, मस्जिद में जाना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, आप सब आजाद हैं, आप जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त तक इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टीबी, और ये जो थे लेकिन फिर भी स्मोकिंग से बाज नहीं आ रहे थे। ही यूज टू स्मोक 50 सिगरेट्स पर डे ऑफ हिज फेवरेट एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिगरेट ब्रांड्स ऑफ हिज टाइम क्रेवन ए, वो स्मोक करते थे। और लेकिन जो है काम की वजह से आखिरकार जो है इनकी हेल्थ इतनी खराब हो गई कि September 11, 1948 को एट द एज ऑफ 71 ही डाइड। और आज ये आर्टिकल पढ़ के मैं काफी जो है बस इमोशनल हो गई। मैंने पूरा आर्टिकल क्योंकि पढ़ा है, पूरे 5,000 words, और उसके अंदर जो जो उनकी स्ट्रगल्स और जो जो उनकी बातें हैं और जो कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है, मैं बयान नहीं कर सकती कि जो क्या लिखा है उसने।
मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को
शायद शर्म आ जाए,
नाम देना, एक कौम देना, एक नाम देना इनके जिम्मे जाता है। Credit goes to him and him.
Yeah.
There are a lot of people with him, but the only thing is that he was the leader, and he is still the leader. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah.
Yeah.
ये थी आज की न्यूज एंड स्पेशल रिपोर्ट, बख्या की खबरें इंशाल्लाह ताला कल। और चलते चलते बस यही कहूंगा कि अब मैं आपको लिए चलूंगा दूसरे स्टूडियो में, जहां पर के आपके साथ जनाब हम प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद। मैं ले चलता हूं आपको जनाब जीशान की जानिब, एंड एक कमर्शियल का ब्रेक लेता हूं मैं, और उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे 416-620-1778।
थैंक यू माजिद भाई, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह।
जेकर घर दे पुराने डाइनिंग टेबल ते बैठ के तुसी ए सोच रहे हो कि हुन नवा फर्नीचर लैण दा टाइम आ गया, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि sodifurniture.com वेबसाइट ते बॉक्सिंग डे सेल लग चुकी है। sodifurniture.com ते तुसी 31 दिसंबर तक एक्सप्लोर कर सकते हो ओवर 1000 फर्नीचर कॉम्बिनेशंस एट अनबीटेबल क्लियर आउट प्राइसेस।
सर्विंग फ्रॉम 39 इयर्स, 3000 स्क्वायर फुट विच इन अदर शोरूम है, प्राइस मैच भी करेंगे। इन अदर स्टाइलिश फर्नीचर sodifurniture.com कॉम पे जाके तुसी देख सकते हो। फॉर बेस्ट बॉक्सिंग डे सेल विजिट 142 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन और कॉल 9058747171।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
जिंदगी में जो भी चुना वो है बहुत ही खास, जिसने बांधे रखा है माजी के दिलकश लम्हों को, रिश्तों के पायदार धागे, बचपन की लामहदूद खुशियों का एहसास, मोहब्बत से जुड़ी रस्मों को बांधे. Bonanza Satrangi now opening in the Ridgeway Plaza at 3960 Eglinton Avenue West, Mississauga, Canada. Enjoy flat 20% off our entire stock during the opening week.
सर्दियों और बर्फबारी के मौके पर जरूरी हदायत. बर्फबारी में सड़क पर पार्किंग गैर कानूनी है. अपनी गाड़ी सड़क से हटा दें ताकि स्नो फ्लोर बर्फ हटा सकें, वरना गैर कानूनी पार्किंग पर टिकट दिया जाएगा, फाइन होगा और गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा. सुबह 11 बजे तक अपने साइड वॉक से बर्फ हटा दें. अपने इलाके में बर्फ हटाने के औकात के लिए 311 ऐप पर ट्रैक करें. शदीद बर्फबारी की सूरत में ये तमाम काम 48 घंटे में अंजाम पाएगा. अगर बर्फ हटाने से मुतालिक मसला है तो 24 आवर्स इंतजार करने के बाद रिपोर्ट करें brampton.ca/snow.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो. ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी. तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी. एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप. 519-622-0660 या quicktrucklube.com. QTL, because we care.
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਵਾਈਲਡ ਰਾਈਡਸ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਅਵੇਲੇਬਲ ਗੋਟ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.99 APR ਪਰਚੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤਮਾਮ ਹੀ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਜਾਂ forddealers.ca ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ.
ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ sodifurniture.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਡੇ ਸੇਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. sodifurniture.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਵਰ 1000 ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਐਟ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ.
ਸਰਵਿੰਗ ਫਰੋਮ 39 ਇਅਰਸ, 30,000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਫਰਨੀਚਰ sodifurniture.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਫੋਰ ਬੈਸਟ ਬਾਕਸਿੰਗ ਡੇ ਸੇਲ ਵਿਜ਼ਿਟ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਕਾਲ 905-875-7171.
ਕਰੋ ਨਏ ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨਾਓ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ. ਜੀ ਹਾਂ, ਨਏ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ. ਜ਼ੂਮ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਰਾਸਤਿਆਂ ਤੇ ਰੂਟਸ ਤੇ ਮੁਫਤ ਰਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਏ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨ ਕਰੋ. ਸੇਫਲੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਨਏ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ.
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਡੋਟ ਕਾਮ, ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900.
سجاؤں گا لٹ کر بھی تیرے بدن کی ڈالی کو لہو جگر کا دوں گا ہنسی لبوں کی لالی کو سجاؤں گا لٹ کر بھی تیرے بدن کی ڈالی کو لہو جگر کا دوں گا ہنسی لبوں کی لالی کو ہے وفا کیا اس جہاں کو ایک دن دکھلا دوں گا میں دیوانہ چرا لیا چرا لیا ہے تم نے جو دل کو نظر نہیں چرانا سنم بدل کے میری تم زندگانی کہیں بدل نہ جانا سنم لے لیا دل ہائے میرا دل ہائے دل لے کر مجھ کو نہ بہلانا چرا لیا ہے تم نے جو دل کو نظر نہیں چرانا سنم
سوار